नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 47वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर व्यापक मंथन किया गया। रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। देहरादून में यूकॉस्ट की सेवरल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आज से देश विदेश से 60 से अधिक वैज्ञानिक, शोधार्थी और अध्यापक लेंगे हिस्सा। और नैनीताल के नैना देवी हिमालयन बर्ड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में 4 दिवसीय पक्षी एवं जैव विविधता सर्वेक्षण पूरा। देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 47वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर व्यापक मंथन किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रभावी संवाद, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था, जिम्मेदार मीडिया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे अहम आधार है। प्रशासन, मीडिया, शिक्षा और जनसंचार क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने एक मत से कहा कि नीतियों के साथ साथ उनके सही और समय पर संप्रेषण से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन के पहले सत्र में स्वास्थ्य विज्ञान और सूचना पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सुलभ और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित भारत की बुनियाद है। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाओं से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों तक विशेषज्ञ इलाज पहुंच रहा है। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि सुशासन की सफलता प्रभावी और पारदर्शी संचार पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनकी जानकारी सही तरीके से जनता तक पहुंचे। यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान को विकसित भारत की आधारशिला बताया और विज्ञान संचार के माध्यम से शोध को समाज से जोड़ने पर जोर दिया। सत्र के दौरान मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र और जनविश्वास के लिए अहम बताया गया।
दूसरे सत्र में मीडिया, शिक्षा और लोकतंत्र पर संवाद हुआ। वक्ताओं ने कहा कि सूचना का प्रभावी प्रसार शासन की सफलता की कुंजी है और डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता बढ़ी है। शिक्षा और मीडिया के समन्वय को समाज को जागरूक बनाने का माध्यम बताया गया। फेक न्यूज को डिजिटल युग की बड़ी चुनौती बताते हुए पत्रकारिता के तथ्य और विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। सम्मेलन के अगले सत्रों में जीएसटी और वन नेशन वन टैक्स के प्रभाव पर चर्चा हुई। कस्टम कमिश्नर बी सुधीमा देवी ने कहा कि जीएसटी से कर प्रणाली सरल हुई है, व्यापार की लागत घटी है और आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। छोटे व्यापारियों और किसानों को भी इसका लाभ मिला है। वक्ताओं ने डिजिटल युग में पब्लिक रिलेशन की चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा की। रेलवे ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण का 99% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से अधिक मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। यह लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। यह स्वच्छ और कुशल रेल परिवहन के विस्तार में देश की क्षमता का प्रतीक है। बागेश्वर में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में अस्मिता खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अंडर 14 और अंडर 16 बालिका वर्ग की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बागनाथ फुटबॉल अकादमी मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में जिले की लगभग 150 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला और चक्का फेंक स्पर्धाएं आयोजित की गई। इस मौके पर जिला एथलेटिक्स संघ के संरक्षक दिलीप सिंह खेतवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के साथ भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं।
इस आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इस बागेश्वर में भी उन्होंने खेलो इंडिया की तरफ जो मीट कराई है और जो हमारे बालिकाओं को एक अवसर दिया, ये सबसे बड़ी बात कह गई। बालिकाओं को अवसर देने का मतलब जो है कि हमारा पहाड़ आगे को चल रहा है, पहाड़ पीछे को नहीं जा रहा, आगे चल रहा है। क्योंकि हमारे बिटिया को देख करके हमारे जो है बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये मेरी आशा भी है। और दूसरी बात, आज सरकार ने बहुत सारे खेल के पर लगा रही है और हमारे बच्चे बागेश्वर के बहुत आगे बढ़ रहे हैं और विशेषकर हमारी लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
देहरादून में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा आज से सेवरल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में देश और विदेश से 60 से अधिक वैज्ञानिक, शोधार्थी और अध्यापक भाग लेंगे। यूकॉस्ट के निदेशक प्रोफेसर दुर्गेशपंत ने बताया कि यह कार्यशाला गणितीय विश्लेषण के एक महत्वपूर्ण और आधुनिक क्षेत्र पर केंद्रित है, जिसका संबंध ज्यामिति, आंशिक अवलोकन, समीकरणों और गणितीय भौतिकी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य देश विदेश के शोधार्थियों और युवा वैज्ञानिकों के बीच शैक्षणिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा मिनी कोर्स और शोध व्याख्यान दिए जाएंगे। ये सत्र विशेष रूप से शोधार्थियों और युवा शिक्षकों के लिए उपयोगी होंगे। इसके साथ ही लोकप्रिय गणित व्याख्यानों के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल तरीके से किया जाएगा। यह मंच ज्ञान विनिमय, शोध सहयोग और अकादमिक नेटवर्किंग का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। नैनीताल के नैना देवी हिमालयन बर्ड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में 4 दिवसीय पक्षी एवं जैव विविधता सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 11 दिसंबर से शुरू हुए इस सर्वेक्षण में 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का अभिलेखन किया गया। इनमें व्हाइट कॉलर ब्लैक बर्ड, माउंटेन हॉक ईगल, फायर ब्रेस्पर्ट, फ्लावर पैकर और कोकलास तीतर जैसी प्रमुख प्रजातियां शामिल हैं। इसके साथ ही लेपर्ड कैट, हिमालयन सेरो, येलो थ्रोटेड मार्टन और बाघ जैसे वन्य जीवों की उपस्थिति भी दर्ज की गई।
ये सर्वेक्षण प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्राणी उद्यान के निदेशक आकाश गंगवार के निर्देशन में नैनीताल वन प्रभाग और ओरिएंटल ट्रेल के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र की पक्षी प्रजातियों और अन्य वन्य जीवों का अभिलेखीकरण करना और प्रतिभागियों, वन विभाग तथा स्थानीय गाइडों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। सर्वेक्षण में महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड सहित 9 राज्यों से आए 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने बॉटैनिकल गार्डन किलबरी, विनायक, कुंजा खड़क, भवाली, महेश खान, चाफी और मुक्तेश्वर क्षेत्रों में कुल 40 ट्रेल्स पर सुबह और शाम 2 चरणों में अवलोकन किए। इस दौरान नैनीताल वन प्रभाग के वनकर्मियों और स्थानीय गाइडों की भी सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम का समापन हिमालयन बोटानिकल गार्डन नारायण नगर में हुआ, जहां प्रतिभागियों के साथ संवाद और फीडबैक सत्र आयोजित किया गया।
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने धर्मशाला में तीसरे T20 में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। पहले गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से मेहमान टीम को 117 रन पर समेटा, फिर बल्लेबाजों ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। उधर दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 241 रन का लक्ष्य दिया था। कनिष्क चौहान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आरोन जॉर्ज ने 85 और कप्तान आयुष महात्री ने 38 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 47वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर व्यापक मंथन किया गया। रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। देहरादून में यूकोस्ट की सेवरल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आज से देश विदेश के 60 से अधिक वैज्ञानिक, शोधार्थी और अध्यापक लेंगे हिस्सा। और नैनीताल के नैना देवी हिमालयन बर्ड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में 4 दिवसीय पक्षी एवं जैव विविधता सर्वेक्षण पूरा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।